ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभुपाद की तो आदेश हुआ है मैनेजमेंट से, प्रभुपाद की लीला कथा होगा। ये कथा जो है प्रभुपाद के समय से चले आ रहा है। यह मंदिर बंबई जो है, जुहू, ये टावर जो देख रहे हो, प्रभुपाद के ऑफिस, आहार एकादशी को शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरु महाराज का ही गुणगान करते थे। क्यों करते थे? बीच में कभी कभी ये प्रश्न आता था, अरे गुरु की वंदना भगवान के मंदिर में हो रहा है, हाँ हम भगवान की क्या सेवा कर सकते हैं? गुरु को ही नहीं जानते, गुरु को ही नहीं समझे, गुरु अपने जीवन में क्या उतारा, क्या किया, तो हम भगवान को कैसा सेवा कर सकते हैं? तो गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जीवन चरित्र पूरा बताते थे। बाद में इस धराधाम का लीला प्रभुपाद का पूरा होने के बाद 1978 से निर्णय लिया गया, यहीं ऑफिस में जीपीसी लोक प्रेसिडेंट हेड पुजारी, तो यहां जो है गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के गुणगान एकादशी के पवित्र रूप से व्रत रह करके हमें सुनना चाहिए, पढ़ के सुनना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम, बोल पढ़ना और सुनना, तो इसमें हम आगे भक्ति में हमें सहायक होगा। तो चलते आ रहा है, तो ये दो जगह तो अनिवार्य है, मुंबई में होता है, यहां से मैं गया हूँ रायपुर, रायपुर में भी सब यही प्रोग्राम होता है, जैसे यहां हो रहा है उसी प्रकार। तो आज अध्यापन एकादशी, अहो भाग्य है मेरा भी, कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष एकादशी 23 तारीख को आखिरी हो जाएगा है। दामोदर भगवान की पूजा, देखो दामोदर भगवान भक्ति के द्वारा अभी अभी हम पढ़े हैं, जो कि बड़े बड़े हजार हजार साल ऋषि मुनि तपस्या करने के बाद भी दर्शन करने में फेल हो जाते थे, हजारों हजार वर्ष तपस्या करने के बाद, लेकिन माता यशोदा देखो भक्ति भाव से जो है बांध ली है। लेकिन उनको भी थोड़ा लाओ, तेरे को आज मैं बांधता हूं, चलो, तो थोड़ा अहम हो गया, मैं बांधती हूं, तो जब पकड़ लिया बांधने गई तो 2 इंच रस्सी कम पड़ जाता है। तो ये मैं शब्द जो है प्रभु भाई बहनों माताएं, ये मैं शब्द बहुत हानिकारक है। हम कितने भी उच्च कोटि के भक्त रहे, सन्यासी रहे, अधिकारी रहे, है पूरा भागवतम का श्लोक कंठस्थ है, लेकिन अहम है तो कुछ फायदा नहीं, बेकार है, तुच्छ, श्रम ही केवलम। तो ये हमें शिक्षा लेना है, क्या पवित्र मन से भगवान का नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें भगवान प्रसन्न होते हैं। जब हम जप करते हैं तो बीच में 8 शब्द होने के बाद श्वास लेना चाहिए, तब कभी गलती नहीं होगा। 16 शब्द को हम रिपीट करते रहेंगे, डर है तो 6 से 7 मिनट में हमें एक माला अगर करते हैं, नो डाउट, किसी प्रकार का अपराध नहीं होगा। अब 5-4 मिनट में करेंगे, डाउट 100% है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दामोदर भगवान की जय। हमें आदेश है प्रभुपाद करते, लेकिन दामोदर भगवान गुरु से ऊपर होते, टॉप हैं, महीना चल रहा है, अब बोलने का मौका कहाँ मिलेगा। 2 शब्द आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, बहुत धन्यवाद, क्षमा करना। तो पढ़ के बताते हैं, ये चश्मा लगना पड़ेगा, कितने आदमी चश्मा नहीं चाहते हो, अगले लाइफ में हाथ उठाइए, अगले लाइफ में कितने लोगों को चश्मा नहीं चाहिए, हाथ उठाओ, हिंदी समझते हो कि नहीं? हाँ हा, तो फिर तो चश्मा कैसे नहीं लगेगा? कहां पर जाने से चश्मा नहीं लगता? गोलोक वृंदावन तो कैसे में जाएंगे? हमारा मन दूषित है तो साफ करना है, है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम अयो केवलम कलो नास्ते 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 कति अन्यथा नो अदर वे नो अदर वे नो अदर वे ओनली वन वे हाईवे या है हाईवे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। अरे मेरे प्रभु लोग, माताएं भाई बहनों, देशवासी, थोड़ा एक मिस्टेक में देख रहा हूं, जब आप लोग को कोई बता नहीं पाए अभी तक, हाथ ऐसे करते हो ये अच्छा नहीं है। ये कैसा है मालूम है? इस किसी को हम श्राप नहीं दे रहे, हाथ ऐसे होना चाहिए। महाप्रभु का हाथ कैसा है? ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा हाथ होना चाहिए। नोट कर लीजिए, संसार में किसी भी क्यों पूछो, चारों संप्रदाय किसी को चाहिए है, हाथ ऐसा होना चाहिए। कैसा? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो। बहुत सुंदर, ऐसा लगा द्वारका का सुधर्मा सभा, भगवान के सभा का गृह का नाम था सुधर्मा सभा, इसे बड़ा आनंद आया है। उसी प्रकार ये लग रहा है राधा रास बिहारी प्रांगण, पहला मंगल आरती क्लास गुरु पूजा के बाद खाली शाम तक, गेट के दाहिने में मंदिर छोटा सा था, झोपड़ा छाप कैसा रहता है इधर खार में, खार घर घर नहीं स्थान तक उसके आगे क्या बोलते इसको, हैं खार बोलते हैं ना, झोपड़ा पट्टी देखो जैसे जहाज से उतरने से इतना झोपड़ा पट्टी गो बॉक्स वैसे ही बहुत राधा रास प्यारी। अभी देखो एम्बुलेंस पहला, लेकिन दोनों में समान भक्त का जो है अटल रहना चाहिए, छोटा रूप में भी बड़े रूप में भी। पहला जब पुजारी में किया, फिर पुजारी ने बताया एक अगरबत्ती मारती करना है, क्यों? पैसा नहीं। और दो अभी हमारे पास एरावत, दो एरावत हैं, हर मंडे को इससे ऊपर होता है, बराबर है, समझ गए ना? तो भगवान की सब कृपा है। चलो पढ़ते हैं भाई, खाली ऐसे बोल लेंगे महाराज कुछ ही बोलता है बोलोगे, पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद लीला मित की जय। प्रकरण 39 एक मंदिर हो। प्रभुपाद ने मायापुर में शिलान्यास समारोह को महाप्रभु चैतन्य की आविर्भाव दिवस गौर पूर्णिमा 29 फरवरी 1972 तक के लिए स्थगित कर दिया था। उनका अनुरोध था कि उस दिन विशाल पंडाल उत्सव मनाया जाए और आध्यात्मिक गतों को निष्कुल भोजन कराया जाए, उनके संसार भर के शिष्यों को भी उस दिन अपना था। मेरी बड़ी इच्छा है कि इस वर्ष यह उत्सव है अपने सभी शिष्यों के साथ मनाऊं। यह बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और इसे माना शिल भक्ति विनोद ठाकुर और उनके पुत्र शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की महती सेवा होगी, अतएव इस कार्यक्रम का आयोजन करें। दिसंबर में जब मायापुर में निकट बांग्लादेश के प्रश्न पर भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया तो भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में विदेशियों के रहने पर प्रतिबंध लगा दिया। भक्त वहां से चले गए थे और युद्ध समाप्त होने के कुछ सप्ताह बाद वे फिर लौट आए थे। उत्सव के आयोजन में वे बराबर लगे रहे थे और गौर पूर्णिमा के कुछ दिन पूर्व प्रभुपाद उनके साथ रहने के लिए वहां पहुंच गए थे। जब प्रभुपाद ने बांस पर एक पताका देखी जिस पर श्री प्रभुपाद का स्वागत अंकित था तो उन्होंने टिप्पणी की, मैं नहीं जानता कि मेरे गुरु भाई इसे पसंद करेंगे। वे पहले ही सुन चुके थे कि उनके कुछ गुरु भाइयों को इस बात पर आपत्ति थी कि उन्होंने वही उपाधि धारण कर रखी थी जो उन गुरु भाइयों के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की थी। वस्तुतः उन्होंने स्वयं यह उपाधि नहीं धारण की थी, वरन उनके शिष्यों ने कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका में यह उपाधि उन्हें दी थी। मई 1968 में जबकि प्रभुपाद बोस्टन में थे, वे एक पत्र लिखा रहे थे और उन्होंने अपने सचिव से कहा था कि आध्यात्मिक गुरु के लिए स्वामी जी की उपाधि वस्तुतः तृतीय श्रेणी की उपाधि है। तब तब उनसे सचिव ने पूछा था, तो हम आपको स्वामी जी क्यों कहते हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, आध्यात्मिक गुरु को सामान्यतः गुरुदेव, विष्णुपाद या प्रभुपाद नाम से संबोधित करते हैं। उनके सचिव ने पूछा था, तो क्या हम आपको प्रभुपाद कह सकते हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, हाँ। और तभी से उनके शिष्य स्वामी की बजाय उन्हें प्रभुपाद कहने लगे। इस दिवाइन के श्रीला प्रभुपाद की। एक शिष्य ने उनसे प्रभुपाद शब्द का अर्थ पूछा था और इस विषय पर बैक टू गॉड हेड पत्रिका में प्रभुपाद शीर्षक से एक वक्तव्य प्रकाशित कराया था। प्रभुपाद वैदिक धर्म की परंपरा में अत्यंत आदरपूर्वक शब्द है और यह संतों में भी महासंत के लिए उपयुक्त होता है। इस शब्द के वास्तव में दो अर्थ हैं। प्रथम प्रभुपाद का अर्थ है वह पुरुष जिसके पदों चरणों पर बहुत से प्रभु, जिसका अर्थ है स्वामी, और जिसे गुरु के अनेक शिष्य एक दूसरे को संबोधित करते समय प्रयोग में लाते हैं। नतमस्तक है एक दूसरा अर्थ है वह पुरुष जो सदैव भगवान कृष्ण के चरण कणों में रहता है। जय हो। तो हम आप सब जितने बैठे हैं, हम सब लोग किसके चरण में हैं जी? जय श्री प्रभुपाद की। जिस गुरु शिष्य परंपरा द्वारा कृष्ण महानामित का मानव जाति में संवहन हुआ है, उसमें ऐसी आध्यात्मिक महत्ता के कई महापुरुष हो गए हैं जो प्रभुपाद कहलाए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा का पालन किया और इसलिए वे उनके पार्षद गोस्वामियों को प्रभुपाद कहते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा का पालन किया, इसलिए उन्हें भी प्रभुपाद उपाधि से संबोधित किया जाता है। हमारे गुरु महाराज ओम विष्णुपाद 108 श्रीमद भक्ति विदान स्वामी महाराज ने उसे उसी तरह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की पाश्चात्य संसार में कृष्ण प्रेम का संदेश पहुंचाने की इच्छा का पालन किया है। इसलिए हम उनके अमेरिकी और यूरोपीय विनती शिष्यों ने संकीर्तन आंदोलन के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हैं। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के चरण चिन्हों का अनुगमन किया है और हम अपने कृष्ण भावना कृष्ण कृपा मूर्ति गुरु महाराज को प्रभुपाद की उपाधि से संबोधित करना चाहते हैं और उन्हें अनुग्रह पूर्वक हाँ कह दिया है। प्रत्येक व्यक्ति प्रभुपाद उपाधि से प्रसन्न था और किसी को इसका पूर्व ज्ञान नहीं था कि इस उपाधि से किसी की ईर्ष्या या भंडाफोड़ होगा। प्रभुपाद भला अपने आध्यात्मिक गुरु महाराज के आदर के प्रतिद्वंदी कैसे बन सकते थे? वे तो अपने गुरु महाराज के विनम्र सेवक के रूप में अडिग थे। इस कौन के सदस्यों को अपने गुरु महाराज को प्रभुपाद कहने में कोई हानि नहीं दिखाई दी और उन्हें कोई रोक नहीं सका था। वे उनके प्रभुपाद थे और पूर्णिमा उत्सव के निमंत्रण पत्र पर भी उन्होंने ऐसी भक्तिविधान प्रभुपाद छाप रखा था। किंतु प्रभुपाद जानते थे कि उनसे उनके कुछ आलोचक गुरु भाइयों की भौंें तन जाएगी। ये तो चलता रहता है मेरा प्रभु, जो प्रभु लोग थोड़े छोटे से बड़े हो तो हर व्यक्ति जो है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। छोटा से किसी कारण बड़ा हो गया है, तलाव नदी में जाओ सागर में, बड़े मच्छी बहुत गहरे पानी में रहते हैं, छोटे मच्छी बेचारा घुटना भर पानी में आनंद लेता रहता है, अंदर क्यों नहीं आता है? अगर अंदर जाएगा तो बड़ा जो है उसको पकड़ के खा लेगा। तो उसी प्रकार कलयुग ऐसा है, हर व्यक्ति है जो है अपने से जो है दबाने की प्रयास में लगा रहा थे। लेकिन भक्त में ऐसा नहीं है, भक्त में ऐसा नहीं होता है। कोई कोई भक्त में ऐसा होता है, क्यों? उनमें भक्ति नहीं है तब ऐसे होता है। भक्ति हमारे में अगर नहीं है तो ये भाव आएगा, अरे ये राधानाथ का चेला है, गोपाल कृष्ण महाराज के चेला है, लोकनाथ स्वामी के चेला है, है? हम सब प्रभुपाद के परिवार है मेरे प्रभु लोग, माता भाई बहनों, हम सब प्रभुपाद के किसी भी प्रभुपाद के शिष्य का चेला है, सब हमारे है। फिर प्रभुपाद कहा करते थे, आप लोग अभी दीक्षा दोगे मेरे बाद और आपके जो शिष्य होंगे वो तुमसे भी आगे बढ़ेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। प्रभुपाद एक उदाहरण बताते हुए, वृंदावन में 1976 की बात है, बाबा जी से एक दोस्ती था प्रभुपाद, प्रभुपाद का एक बाबा जी से दोस्ती था। तो एक बाबा जी के पास एक बच्चा आया था छोटा जैसे आपके बराबर, प्रभुपाद अरे बाबा जी महाराज ये दिन भर हाथ ऐसा हिलाते रहते हो, अंदर क्या बोल रहे हो? बोला जप कर रहे हैं। ये क्या होता है, कैसे जप करते? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाबा जी लोग का अलग जप होता है मंत्र, लेकिन प्रभुपाद दोस्ती होने कारण आप हम दोनों का दोस्ती है तो हरे कृष्ण को भी जपोगे तो और पावरफुल रहोगे। तो उन्होंने हरे कृष्ण को ही माला कर, तो एक शिष्य एक भक्त आया, बोलते हैं जप करते हुए इसमें क्या फायदा है, आनंद आता है, भगवान से वार्तालाप होते। अरे भगवान से वार्तालाप होते, अब भगवान को देखते भी हो? हाँ। तो मुझे बताओगे, मैं भी देखना चाहता हूँ। हाँ तो कब बताओगे? कल आइए सुबह नहा धोके। सुबह बच्चा आ गया 17-18 साल का बच्चा, चलो आज सब झाड़ू मारो, थोड़ा खिचड़ी बनाओ, गुरु को खिलाया, गुरु महाराज बाबा जी पूरा खा गए खिचड़ी। फिर शाम को खिचड़ी बनाने बोले, गुरु जी को खिचड़ी दिया, तो तुमने क्या खाया सुबह? आप तो पूरा खा गए, मुझे देने में कुछ नहीं खाया हूं। फिर उन्होंने आधा खिचड़ी छोड़ दिए खाए। तो बोलते हैं कब बताओगे भगवान? कल सुबह बताता हूं। ऐसा 3-4 दिन आया तो बोलते मुझे झाड़ू पोछा करने के लिए, सेवा करने के लिए बुलाए क्या? अब बोलते 3-4 दिन हो गया, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ बच्चा, अभी बताता हूँ, भगवान से अभी बात करता हूँ। बोला देख ये हमारे आंगन में जो पीपल के झाड़ है इसमें कितने पत्ते हैं, उतने बार जन्म लेना पड़ेगा फिर भगवान का दर्शन तुम्हें होगा। ओ इतने प्रसन्न हो गया ब्रह्मचारी, इतने प्रसन्न हो गया, हे मेरे गुरु महाराज बोल दिए मुझे भगवान का दर्शन होगा। लेकिन ये नहीं सोचा यहाँ लाखों पत्ते हैं, लाखों बार जन्म देगा। उनको मन में ये बैठ गया, ये विश्वास हो गया गुरु महाराज बोल दिए मुझे दर्शन होगा। कुछ महीने बाद प्रभु जी लड़का बीमार हुआ, अब अपने भजन कोटी में गुरु महाराज के साथ, गुरु महाराज के गोद में जो है उसका सिर है, और गुरु जी जप कर रहे हैं, सुनते सुनते श्वास बंद हो गया। तो ये कहां गया ये बच्चा? शरीर छोड़ने के बाद कहां गया बताइए? वो लोग वृंदावन, लेकिन गुरु महाराज बोले थे कितने लाखों पत्ते हैं सिर्फ इतने बार जन्म लेना पड़ेगा। तो भक्ति अगर हमारे में होती है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। महाराज खटवांग ने पल भर में भक्ति प्राप्त किया, स्वर्ग लोक में वो थे, कथा अलग है मैं ज्यादा लंबा नहीं बता रहा हूं, है? लेकिन सुर हरे थे, लेकिन ईश्वर सुर जब जीत गए उनको कुछ दक्षिणा देना था भगवान की कथा सुनाने से, ये भागवत है कुछ पूजा है तो दक्षिणा देना पड़ता है, तो दक्षिणा देंगे तो दक्षिणा देने का समय भी निर्धारित देखना पड़ता है। तो उनका पंचांग देखा गया कुलशेखर महाराज का, तो कुछ मिनट के बाद उनका अंत होने वाला है, सब चुप रहे। बृहस्पति को पूछते हैं क्या हुआ? बोला आपको हम कुछ दक्षिणा देना चाहते थे, सब देवता लोग, लेकिन लेकिन क्या बात है? आपका श्वास बंद होना बहुत कम समय है, ठीक है नमस्कार मैं जाता हूँ। स्वर्ग लोक को तुरंत छोड़ दिए, पृथ्वी लोक में आकर के भगवान में मन लगा लिए और पल भर में भगवत प्राप्ति की। लेकिन यहाँ आजकल संसारी लोग देखते हैं, दिन रात जो है स्वर्ग जाने के पीछे गधे के बराबर मेहनत करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेना चाहते, आप पाप खाते हैं। पाप क्यों खाते हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवत गीता में भगवान बताते हैं, तीसरा अध्याय का 13 श्लोक में देखो, भगवान के भक्त जो है भगवान को अर्पित किया ही भोजन प्रसाद खाते हैं और बाकी लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं, तो कैसा भले वो चोर भी है, वो कैसे चोर? क्योंकि भगवान ने घोषणा किया है, आगे क्या घोषणा किया है जी? न विष्णु किए, न राम किए है, न कोई देवी देवता किया, लेकिन भगवान घोषणा करते हैं, भुक्तारम यगतवसा सर्वलोक महेश्वरम, मैं भुक्ता हूं। लेकिन हम भुक्ता बनते हैं तो क्या होता है? हम मरुकंठ बांधेंगे, भक्त बनेंगे, हम भुक्ता बनेंगे तो? और इससे आगे उदाहरण ज्यादा नहीं देता हूं, वैसे लोग जो है सरकार के अधीन में रह जाते हैं है? तो इससे सावधान, इस काल ऐसा नहीं है, इस काल में बड़ी सावधानी से रहा जाता है। तो आगे पढ़कर बता रहा हूं, भक्तों के आवास की अवस्था का निरीक्षण करते हुए प्रभुपाद ने पाया कि क्षेत्र के निवास के लंबे चौड़े तंबू लगे थे, एक पुरुष के लिए और एक महिलाओं के लिए, उनके अंदर परिदीप्ति प्रकाश की व्यवस्था थी, अन्य वस्तुओं के मध्य एक विशाल पंडाल का तंबू लगा था और उसके पीछे लगे छोटे तंबू में रसोई घर था। तंबुओं के छोटे से परिसर की चारों ओर धान के खेत थे, इसलिए जमीन किचित नमक थी और जल से भरे खेतों में बड़े बड़े मच्छर थे जो सूर्यास्त होते ही प्रकट हो जाते थे। अधिम युग की इसी स्थिति थी, किंतु भक्तों में से बहुत से वे ही भक्त थे जो प्रभुपाद के साथ भारत में 1.5 वर्ष से यात्रा करते आ रहे थे। इस दौरान उन्हें कभी कभी गंदी धर्मशालाओं के नंगे कमरों में रहना पड़ा था, तो कभी इलाहाबाद में ठंडे तंबुओं में। भक्त मायापुर आराम से रहने नहीं वरन प्रभुपाद की सेवा करने आए थे। आगामी वर्षों में उनके प्रयासों के फल स्वरूप बहुत से भक्त मायापुर में एकत्रित होकर उन्हें विशाल भवनों में आराम से रह सकेंगे, जिनकी योजना प्रभुपाद बना रहे थे। उसी प्रकार ये जो टावर दो है गुरु महाराज ने उसी ने बनाया है, हम भक्तों के लिए नहीं। उस समय कहते थे श्री प्रभुपाद 1977 में, ये जो है मंदिर, जो विदेशी भक्त हैं आपके गुरु भाई लोग, इनका रहना सहना बहुत उच्च कोटि के, तो उन्हें भारत में लाएंगे तो ऑलरेडी मायापुर में वृंदावन में वस्त्र काफी होता है ठंडी में गर्मी से, तो यहाँ ऐसा ऑफिस में रहे और जब भी वो आए उनके लिए बिल्डिंग, लाइफ मेंबर के लिए एक्चुअली नहीं, ये उनके लिए बनाया। लेकिन अब भक्त ऐसे रहते थे, खैर अभी तो नहीं है, बहुत तो नहीं के बराबर है। तो देखो प्रभुपाद की इच्छा कहाँ तक, गुरु कहाँ तक सोचते हैं आगे, ये सब अच्छे रहने वाले है तो उनको किसी प्रकार की जो मन में विचार न आ जाए कि यहाँ तो खाने को नहीं मिलता है, बैठने को नहीं, पानी बराबर नहाने को नहीं है, है? ये ऐसा मौका नहीं आना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद बोले 2 बार भक्त प्रसाद खाओ, बहुत अच्छा से खाओ, अच्छा से बनाइए, स्वादिष्ट है, राजसिक तामसिक नहीं, सात्विक भोजन बना के भगवान को भोग लगा के खाइए, तो जो है हमेशा फ्रेश रहेंगे। और देखो आप लोग कितने अच्छे फ्रेश लग रहे हो है, राधा रास बिहारी के प्रसाद खा के बड़ा पुलेंस रामा जी, राधा रास बिहारी बड़े पावरफुल हैं, है? बड़ा अच्छा से आप सेवा करो, अब उनकी सेवा में आप आगे बढ़ना चाहोगे, जरूर आपकी इच्छा पूरा करेंगे श्रीमती राधा रानी प्रभुपाद। ये है बिल्कुल सत्य बात है, भगवान के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, उसके लिए कोई भी कार्य करो, कहीं भी जाके करो, जहां नहीं है करो। जैसा गुरु महाराज ने अपने शिष्य को ये बताए थे, तुम लोग प्रचार कर रहे हो, बुक बांट रहे हो, या एक मंदिर में अथॉरिटी बने हो, जो भी हो, लेकिन जहां जन्म लिए हो वहां अगर इस्कान का प्रचार नहीं है तो वहां जाओ। श्रील प्रभुपाद तो उसे जाने से अवश्य 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 आगे बढ़ते हैं। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, काम पूरा होता है, ये बात तो सत्य है, है? तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद का आवास लगभग 12 फुट का वर्गाकार एक फूं से निर्मित बंगाली कुटीर था। इसका फर्शा ऊंचा था। मुख्य कमरे और सेकों की आवाज के बीच एक पतली सी दीवार थी। कुटीर के सामने एक बरामदा था और उसके पीछे एक बगीचा था जहां प्रभुपाद बैठते थे और मालिश कराते थे। पीछे की ओर स्नान के लिए एक हैंडपंप और एक आउटर हाउस भी था। जब भक्तों ने क्षमा याचना की कि ये प्रभुपाद के लिए ऐसे ही मामूली आवास की व्यवस्था कर सके, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि उन्हें प्राकृतिक सरल परिवेश पसंद था। उन्होंने कहा, यदि तुम मेरे लिए बहुत विशाल महल निर्मित करा दो, फिर भी यहाँ रहना पसंद करूंगा। ये बात है स्वाभाविक। तो गुरु महाराज बहुत सरल, तो अगर आप लोग की मैं इजाजत लेना चाहता हूँ, ले रहा हूँ, ये तो पढ़ के है हमारे गुरु भाई सस्वरूप गोस्वामी महाराज लिखे हैं, बाद में हिंदी किया गया है, ठीक है। तो जो कुछ मैं अपना व्यक्तिगत प्रभुपाद के सामने गुजरा हुआ है, बम्बई में, दिल्ली में, वृंदावन में, 1977 कुंभ मेला में, मायापुर में, तो जहाँ का बोलोगे आप लोग, जहाँ का इच्छा करोगे मैं बोलूँगा, अगर आप लोग का इजाज़त। व्यक्तिकल जो बातें क्या किया गुजरा, कहाँ का बोलूँ बताइए। मैनेजर साहब मुकुंद माधव हैं, मुंबई का, जय हो, ठीक है। मेरा जन्म स्थान ये है, लेकिन नामकरण हुआ राधा पार्षार्थी मंदिर 1976 राधा अष्टमी को नामकरण है, लेकिन यहाँ 1976 27 जनवरी को मैं इधर आया, शुरू कर रहा हूँ। चलो प्रभुपाद की, तो थोड़ा एक दो शब्द में आया तो आ जाएगा दो तीन मिनट के लिए, शुरू से तो अच्छा रहता है। तब यहां मैं कैसे आया, मुलुंडे में से, मैं जो है मुलुंडे एक फैक्ट्री गाला डंपिंग रोड में सर्विस करता था, सुपरवाइजर था फैक्ट्री में, जो 25-30 वर्कर थे, जैन था, गुजराती, मूर्ति पूजा वगैरह मैं ही करता था सब। तो हाँ, 26 जनवरी बम्बई में जो है बहुत अच्छा डेकोरेट होता है वीटी में, यहाँ इससे सजावट लाइट होती है, उससे अभी मालूम नहीं। तो उस दिन 2 बजे रात तक शूट रहता था, उस समय तुम देखने गए थे, रात को धीरे रह गए, फिर वहां से मुलुंड बहुत लेट, तो स्टेशन में सो गया और नहा धो के 1 रुपया दे करके, नहा धो करके साहब जो है डोंगरे महाराज की कथा चल रहा था, वेरी पावरफुल वॉइस, बहुत डोंगरे महाराज, परफेक्ट पर्सन, भागवत, श्रीमद भागवत, और सब शिवाजी पार्क में सुनने वाले थे, तो 100 गाड़ी ट्रक बस उसमें ले जाते था, तो कथा सुनने में भी गया था उधर था, तो सुन करके जब बाहर निकला, ब्रेकफास्ट प्रसाद लेकर के, पोहा, लड्डू, चाय है, तो इस्कान का बुक टेबल लगा हुआ था, तो यहाँ टेम्पल कमांडर उस समय थे अक्षय प्रभु ब्रिटिश वो थे, और एक माता जी था या ऑस्ट्रेलियन रुक्मिणी देवी, और एक नया भक्त 8 दिन पहले बनारस का रहने वाला भरत मिश्रा, ये बुक टेबल लगाए, तो राधा पार्थ सारथी का बड़ा अच्छा पोस्टर, इतना बड़ा, मैं बोला ये कितना पैसा है, 8 रुपया वाला, ठीक है। केशव वो इतना बड़ा, बहुत सुंदर, 16 रुपये में। हिंदी किताब क्या है, एक हिंदी केवल श्री उपनिषद, इसका कीमत कितना, 4 रुपये, तो 20 रुपया मैंने खर्चा किया अलिया। तो भरत मिश्रा जी बोलते हैं ये कार्ड लो भाई साहब, ये कार्ड लो पंडित जी। पंडित जी क्यों बोले मुझे, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई में खास करके जो पेंट नहीं पहनता धोती पहनता है उसको पंडित जी बोलते हैं। अब इंक्वायरी कर सकते हो, है ये महाराष्ट्र का ही रोल। तो पंडित जी, मैं तो पंडित नहीं हूं भाई। अरे भाई पंडित की है, महाराष्ट्र में धोती पहने वाले हम लोग पंडित बोलते हैं यहाँ सब, तो घर में सब उतार दिया। तो नेक्स्ट डे मैं इधर आया, तो उस समय जो है गिरिराज बीमार थे, तो कलकत्ता में थे। प्रभा विष्णु अभी नेपाल में है, वो प्रेसिडेंट थे लोकनाथ महाराज। तो भरत मिश्र अच्छा मैं पहुंचा इधर लगभग 10 बजे के समय में, तो प्रभुपाद नहीं थे, और 2 मिनट में आ जाएगा नंबर है। तो भरत मिश्रा छोटा मंदिर में बैठा था, ओ आगे आगे पंडित जी आगे, बोला हाँ नमस्कार नमस्कार। तो भगवान को बहुत गुलाबी ड्रेस और कांच लगा हुआ था, माताएं अनंत मंजरी हेठ पुजारी थी, सर्वमंगला है, विश्वादेवी थोड़ा बाद में आई है, और एक ऑस्ट्रेलियन नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा है। तो इस माता जी लोग पुजारी थे, बहुत सुंदर अच्छा श्रृंगार किए थे है। तो कभी कभी वो जो है बगुला का पंख जैसा नित्यानंद को डालते हैं ना, राजा लोग डालते हैं ना, तो वो सिर लगा थे राधा। तो इतना जीवन में पहली बार इतना आकर्षक विग्रह श्रृंगार मिला। तो इस काल में बात सत्य है प्रभु लोग, इस काल में जब श्रृंगार होता है अगला जगह हम अलग दूसरा मंदिरों में ये आनंद नहीं आता। हम लोग केवल नहीं, सब लोग बोलते हैं बात, ये बात सही है। तो क्यों भक्ति भाव से हम लोग सेवा करते हैं, भगवान को मानते नहीं सेवा करते हैं। हमारा जीवन होना चाहिए कि हम भगवान को प्रसन्न करने या गुरु को प्रसन्न करने के लिए जीवन जिए, ये भक्ति है। गुरु महाराज को कैसे प्रसन्न कर सकें, भगवान को कैसे प्रसन्न, गुरु प्रसन्न है तो भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हो है। गुरु को प्रसन्न करना जरूरी है। तो देखा रहे बहुत बहुत अच्छा। तो मुझे वहां बैठा चरणामृत दिए बैठा, दोपहर को प्रसाद होगा, अभी तुम खा लिए। तो पहला जगह नहीं प्रसाद खाने का मेरे प्रभु, तो वहीं प्रसाद खा के इतना बड़ा हाल नहीं, या ये खुंडी है ना वहां से लेकर कितना बड़ा होगा। अब समय भी भगवान के मंदिर में सामने हिस्से में चांदी लगा हुआ था अल्टर में। तो दो बजे 12:30 बजे आरती हुई, भोग लगने के बाद प्रसाद थोड़ा दिए, दोपहर को प्रसाद खाए, ऐसा जप करते रहे। तो शाम को जो है लोकनाथ स्वामी आए, संध्या आरती के बाद उनके पास बैठा बातचीत किए, यहां रहो ये लड़का यहां रहना चाहता है, जो कैसा लगा अच्छा था। तो कहा सुबह मंगल आरती 4:30 बजे से आकर रात को 9 बजे तक रहना होगा, 2 महीना बाहर रहना होगा, आप फिर दिन भाई दर्शन। मैं ऐसा ऐसा रहता हूं बाहर। तो बोला कोई बात नहीं, आप जानो ये रूल है, तो ये स्थगित में कर दे रहा हूं, ये लंबा अच्छा नहीं, अब तो थोड़ा शब्द है तो कोई बात नहीं। लेकिन चौथा दिन में जब यहां मैं रहा, मुझे रखा गया शॉर्टकट, कुछ शब्द निकाल दिया। तो एक सिंधी लड़का था, नाम याद नहीं, कॉलेज में था, पढ़ता था, वो आता था, पढ़ता था, किताब वताब हमेशा रखा था। अरे भाई साहब देखो स्कूल का दरवाजा टूटा है, इधर सो जाओ ना यार, ये अंग्रेज 3 बजे उड़ जाते हैं, कहां जाओगे अब। तो मैं यहीं सो गया, और 3 बजे हमारे विदेशी भक्त उठ गए, तो मैं भी आ गया, उठ करके कुआं में बाल्टी से पानी लेके ब्रश किया, नहाया धोया। तो लोकनाथ महाराज आ जाते हैं, लेट हो गया, लेट चलो मंगा थी बाद में नहा लेना। ये महाराज आप बोलते हो मंदिर जाना है या बिना नहाए चलो बोलते है, ये कैसा है। मैंने नहा के भेजाएगा आप, चलिए मैं आ रहा हूँ, आ गया नहा के, समय में आ गया संग बजने पहले। रहा 3 दिन ऐसे बीता, चौथा दिन जो है प्रभुपाद आ रहे हैं, चलो एयरपोर्ट चलो, सब जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो एयरपोर्ट टेम्पल कमांडर से दोस्ती हो गया, उसी के साथ मैं भी चला गया। तो गुरु जी को डायरेक्ट सीढ़ी से उतरते ही वहां से कीर्तन करते करते जो है प्रभुपाद के एम्बेसेडर अभी यहां है, तो उसे बैठा के इधर लाया गया प्रभुपाद, तो यहां पर लाया गया सब सीनियर वैष्णव सन्यासी सब। प्रभुपाद आते ही चरण पखा ले, पूजा की। तो प्रभुपाद से दर्शन मुलाकात उसमें ऐसा हुआ तीन दिन बाद प्रभुपाद के जो प्रसाद बनाने वाले एक प्रभु जी था, मसाज भी करता था प्रभुपाद, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो तबियत ठीक नहीं तो प्रसाद शाम का नहीं बनाए हैं और हमें किचन में सेवा दिए थे। पांच छह वक्त चार पांच इंडियन थे तो सब्जी काटो बनाओ, तो सवाल प्रभु अभी नहीं रहे हो एक पैर, तो बहुत अच्छा बनाते थे तो उनको सहायता करते थे हम लोग। तो शाम को प्रभुपाद के लिए प्रसाद, शाम को छह बज गया प्रसाद नहीं, तो गोपाल कृष्ण महाराज जी भी इसी तो परेशान हो रहे थे, गोपाल कृष्ण महाराज कौन बनाएगा, तो प्रभुपाद बोले तुम लोग जो प्रसाद खाए हो उसी को लाओ। नहीं नहीं प्रभुपाद बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं, हम परिवार के साथ बना, मेरे परिवार के साथ बना रहा हूं, महाराज गृहस्थ थे उस, तो बोले नहीं तुम लोग जो बनाए हो खाए हो भगवान को भोग लगाए हो कि नहीं, हाँ बनाए हैं, तो प्रभुपाद के उस ले गए। तो दिन मेरा नंबर था शाम को प्रसाद बनाने का, आलू बड़ा और हलवा, हलवा आलू बड़ा बनाया था, सुबाल प्रभु बनाए थे इमली गुड़ का खजूर चट, खजूर इमली गुड़ खजूर इसका चटनी उबाल के, खिचड़ी पापड़ कढ़ी और ऐसा मिलजुल के सब भक्त बनाए थे। तो महाराज ने प्रसाद ले गए, हम लोग जो खाए थे खा चुके हैं प्रभुपाद के लिए बाद में, छह सवा छह बजे की बात है, 1976 में जनवरी महीना बाद जनवरी या फरवरी है, जरा क्षमा करना, यहाँ जनवरी पहले ये शायद थोड़ा आगे है। तो प्रभुपाद पूरा कटोरी हलवा खा गए, हलवा उनको पसंद आया। इधर आरती हो रहा है तो आरती में मैं था उधर, तो महाराज निशोलेश गोपाल कृष्ण महाराज को बोले प्रसाद कौन बनाता है, बहुत अच्छा प्रसाद है आज, ये हलवा कौन बनाया, एक भक्त अभी आया है नया है क्या, एक हफ्ता हो रहा है वो बनाया है, जरा उसको बुलाओ मैं बात करना चाहता हूँ। तो महाराज आए, हम वहां पर संध्या आरती में नाच गा रहे थे नया भगत, तो मेरा नाम था सत्यानंद, सत्यानंद जी तुम्हारा बनाया हुआ प्रसाद प्रभुपाद को बहुत पसंद है, चलो। बोला ठीक है आरती के बाद में आ रहा हूँ चलो। अरे प्रभुपाद बुला रहे तो गुरु के बारे में मालूम नहीं, प्रभु गुरु के बारे में उस समय मालूम नहीं था, तो फिर मैं यहां पकड़े मेरा चलो चलो, तो गए। तो अभी वो बिल्डिंग नहीं है जहां नर्मदा महाराज रहते थे ना, वहां उसमें गुरु महाराज रहते थे, और ऊपर टेरेस में बैठे थे, तो वहां पर तमाल कृष्ण महाराज, ब्रह्मानंद महाराज, गर्ग मुनि ब्रह्मानंद दोनों भाई हैं, श्रीधर महाराज, तमाल कृष्ण महाराज सब सन्यासी, और देव कुमार फिल्म एक्टर अभी वो नहीं है, वो उनकी पत्नी और उनकी बेटी छह महीना की थी तो टावेल बिछा के सुलाए थे, बैठे थे। तो जैसे कि गोपाल कृष्ण महाराज जैसे प्रणाम किया तो मैं भी वैसे प्रणाम किया, तो प्रभुपाद कुछ बातें कर रहे थे तो खड़े हो गए थे, मैं भी खड़ा हूं, जैसा रुके प्रभुपाद बात करने में जब बंद हुआ, ये बच्चा बनाया है ये लड़का बच्चा, तो मैं जा रहा हूं प्रभुपाद, तो निकल गए बैठे, मतलब मुझे बोलते बैठो बैठो प्रभुपाद, मैं खड़ा रहा बैठो, मतलब प्रभुपाद आप लोग बैठे मैं ठीक है बैठो, बैठ गया, तीन बार बोले बैठना पड़ा। तो शिल प्रभुपाद बोलते हैं बम्बई में बड़ा अच्छा प्रसाद खा रहे हैं, हलवा तुमने बनाया, बोला हाँ प्रभुपाद, तो ये घर में यही काम करते थे क्या, बोला नहीं प्रभुपाद ये काम नहीं करता था घर में, तो कैसे इतना अच्छा बना लिया, मैं बोला शिल प्रभुपाद मैं जो है स्कूल 10 क्लास के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, बाद में मम्मी बोली कि तुम टेलर का काम करोगे या स्वर्णकार का, तो मैं बोला स्वर्णकार का, सुना स्वर्णकार ज्वेलरी बना, तो बोला हाँ जो अब सोनी हो, बोला सोनी नहीं हूं लेकिन सीखा मामा गांव में, तो हमारा भगवान का मुकुट टूट गया है, तो बोलते हैं ओके आई लाइक टू सी दिस क्राउन राधा रास बिहारी, मुकुट लेके आए अब मुझे उसमें बातें हो रहा था, मुकुट लेने में 2-3 मिनट तो लगेगा ना, वहां से यहाँ आने में 5 मिनट। तो उसमें पूछ रहे थे और क्या करते थे। बोला माता जी शाम को सेवा में लगाई थी, लालटेन साफ करना, किरासिन भरना, जलाना, फिर हाथ पांव धो के हनुमान चालीसा पढ़ना। भगवान राम हनुमान चालीसा, अच्छा क्या 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 हनुमान चालीसा के पढ़? जय हनुमान गुण ज्ञान सागर जय कपीशति हूँ लोग, हमें पढ़ के सुना थी। ओ अच्छा ठीक है, मुकुट आ गया उसने में। तो मैं देखा प्रभुपाद 10 मिनट का काम है, लेकिन इसके लिए कुछ सामान चाहिए। तो बोला ठीक है, कितना पैसा चाहिए? बोला 70-80 रुपया हो जाए। तो वहाँ टेम्पल कमांडर को बोले गिव दिस बाय टुमारो 100 रुपीज मॉर्निंग आफ्टर प्रसाद। तो मुझे 100 रुपया दिए, तो 5 पैसा में बस करके मैं गया संतागुच, 10 पैसा में चर्च गेट, है चर्च गेट से उतर करके वहां पर आकर के 10 नया पैसा है। तो फिर सामान खरीद 70 या 80 रुपया में लेके आया, और फिर प्रभुपाद के सामने ले गया और मैंने 10-12 मिनट के अंदर बना के दे दिया प्रभुपाद बहुत। तो उसी दिन, उसके पहले दिन, दिस इज अ गुड कुक, अ वर्कशिपिंग, अ ज्वेलरी मेकर, है तो आई लाइक दिस बॉय पुजारी हियर आफ्टर इनिशिएशन, सेकेंड इनिशिएशन आई कीप पुजारी, ओके बोला ओके गुरु गोपाल कृष्ण महाराज है। तो ये बात उनको ही सीख, तो हम कुके में रखे थे, कुके में 4-5 भगत थे जी, या बड़ा हरिदास प्रभु हैं, वो कुकी में सब्जी काट रहे हैं, रसोई कर रहे, तो वहां वो हिंदी क्लास देते थे और हम लोग सुनते थे। हरिदास प्रभु बैठे हैं इधर कहां है? तो ऐसा करके चलते गया तो सुबाल प्रभु में और 2-3-4 कुकिंग ऐसा अच्छा बनाने लगे, फिर और भक्त आ गए और मायापुर लोकनाथ महाराज वगैरह सब मायापुर गए, वहां आते तक हम संभाले। जब जब लोकनाथ महाराज वगैरह आ गए, प्रभुपाद बोले हैं कि हमें प्रचार करो, तो जर्मनी का बस है, हम वहां जा रहे हैं। तो ये लोकनाथ महाराज हंसदूता ये लोग प्रचार में आगे चले गए, हम यहीं रहे। तो कुकिंग करना, एक बार शिला प्रभुपाद के पास जो 2 भक्त थे, हमको दिया गया था सब्जी वब्जी काटने के लिए, ये जो है अंडरग्राउंड बन रहा था, वाटर प्रूफ इसको बना रहे थे, पानी उनी भर के प्लस्तर हो चुका था अंडरग्राउंड जो है। तो 2 अमेरिकन और 2 इंडियन मिल करके बीड़ी पीते थे, सिगरेट। टेम्पल कमांडर बोला मत पियो, ये नहीं पीना, नहीं माने। तो ये बात गिरिराज महाराज ने, मैं प्रभुपाद को पूछ रहा हूं, प्रभुपाद को पूछे, प्रभुपाद बोले दोनों बच्चों में जो है दो अमेरिकन हैं, उनको प्रचार करके रखो, और जो 2 इंडियन हैं उनको 2-2 तमाचा लगा के निकाल दो बाहर। प्रभुपाद का तो लोकनाथ महेश्वरी, तो गिरिराज महाराज ने प्रश्न किया, प्रभुपाद आई हैव वन क्वेश्चन, यस दिस 4 पर्सन सेम मिस्टेक, सेम डूइंग अ साइंस फोर, ये कीप 2 फॉरेनर वेस्टर्न ब्रह्मचारी स्टे, टू है इंडियन बॉय किक आउट, व्हाई? ओ गुड क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज नॉट टू वेरी बैड स्मोकिंग, इफ फ्रीज आफ्टर फॉलो फॉरगेटिंग, ये इंडियन नेबर फॉरगेट, ये थ्रो आउट आफ्टर सफरिंग फूड वेयर स्लीप एंड मे बी सब आउटसाइड स्लीप, पुलिस की ब्रिंक थाना में बंद कर देगा, है थाना में बंद कर देगा, 2-2 डंडा लगाएगा, ऐसा सफरिंग करेंगे, 8-10 दिन दोबारा आएंगे तो फिर गलती नहीं करेंगे। अब ऐसे हुआ प्रभु, उनको जब भगा दिया गया 15-20 दिन के बाद आए और फिर इनको यहां रखा गया। फिर भी अभ्यास है योगेन, जो अपना अभ्यास है, जो अपना आदत है, नेचर है, वो मरते दम तक बदलता नहीं है। अपने आचरण जो है केवल भक्ति मार्ग में थोड़े हम सुधार कर सकते हैं, जिसको शुगर हो गया शुगर छोड़ेगा नहीं, कंट्रोल होता है, बराबर है, खांसी वगैरह टीवी छूट जाता है लेकिन ये छोड़ेगा नहीं। तो उसी प्रकार हमारे जो नेचर हैं, जो डिजायर है ये बना दे, दबा रहता है भक्ति में, दबा रहता है, उसीलिए भगवान श्रील प्रभुपाद रहते हैं है? कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे माया ताके झापटिया धरे। हम थोड़ा सा ढीला हो जाए, किताब बेचने गए हैं पुस्तक, थोड़ा भूख लग रहा है, बड़ी अच्छी अनार जूस मिल रहा है, फल है वहां जाके खा लें, तब तो गया माया। अब उसी फल को ले आए है, एक जगह बैठ जाए है, धो लें और पुस्तक रखे प्रभुपाद को भोग लगा खाएं, ये भक्ति है। अब ऐसे करते थे हम लोकनाथ स्वामी के साथ मथुरा में है, ये उन्होंने बताया ऐसा करो। तो भक्त क्या करता था, फिर ऐसा वो बनाते बनाते सब्जी जो है, सब्जी काटते काटते मटर छिल रहा है ना, दो दाना मुंह में, दो दाना मैं बोला ये मेरा आदत है, मैं तो बता देता हूँ। वह टेम्पल कमांडर को बोला दिस नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, है मेरा अंग्रेजी बराबर नहीं उस समय, तो उस समय बता देते थे, तो उसको अलग किए। बोला यशोमती प्रभु का फोन आया, मुझे दो भक्त भेज दो, तो दोनों को वहां भेज दिया गया। तो वहां भी जो है डीटी किचन साफ करने में लगाया, तो फ्रिज में पीड़ा उड़ा भोग है, तो उसको पीड़ा को खा, तो यशोमती नंदन वहां आए ऐसे कर ऐसे दबा, यशोमती नंदन बड़े कड़क देखा, तो पीड़ा दो तमाचा लगा के बाहर निकाल दिया। तो स्वभाव जो है जाता नहीं मेरे प्रभु लोग, स्वभाव आदमी के बड़ा खतरनाक है कलयुग में। तो गुरु महाराज का ऐसा लीला है। तो यहाँ और जब यहाँ 1977 में श्रील प्रभुपाद बहुत बीमार, प्रभु उनका चेयर है उधर, बहुत देखे हो ना बहुत। तो रामनवमी के दिन अप्रैल महीना 1977 है, क्रॉस मैदान, चर्च गेट क्रॉस मैदान में प्रोग्राम रखा गया था। सुबह प्रभुपाद को जो है उस दिन यहाँ क्लास नहीं, सिंगार आरती के बाद तमाल कृष्ण महाराज मुझे जी, मैं वहां था टेम्पल कमांडर के पीछे पीछे में रहता था हमेशा, तो वहां जो है तो उस समय खैर पुजारी था मैं, तो देख क्या हो चुका था। तो तमाल कृष्ण महाराजा में दोनों को जो मैंने व्हील चेयर चेयर है ना, जो प्रभुपाद को बैठा के गाड़ी में बैठाया था वो चेयर अभी भी है, तो उसमें दोनों लिफ्ट तक लाए, लिफ्ट में रख के फिर अम्बेसडर उधर था वहां बैठाया गया और गए। तो प्रभुपाद तमाल कृष्ण महाराज है अगर के मुनि वहां उसमें बैठे, ब्रह्मानंद चार आदमी प्रभुपाद गए, एक ड्राइवर था बिहार का बहुत सुंदर, नाम याद नहीं आ रहा है। और हम लोग ऐसे टैक्सी उसी करके ट्रेन करके सब वहां पहुंचे, बहुत बड़ा पंडाल, 10 से 15-12 13 हजार लोग थे जो। तो उस समय अच्युतानंद महाराज हवन किए यज्ञ, और वहां भक्तों को दीक्षा हुआ, रघुपति राघव, राम रंजन, राम राघव, राम राघव एक ओल्ड सिंधी भाई थे, बहुत बुढ़ा उम्र वाला, 75 से 70-80 लगभग की उम्र थे, उनको भी दिखाया हुआ। एक राजस्थानी सोनार था, तो सब रो रखे में ऐसे 6-7 आदमी को दिखाया हुआ। तो एक गायत्री था मंत्र, ब्राह्मण इनिशिएशन, वो है पूर्ण ब्रह्म, दक्षिण यहाँ विशाखापट्टनम तरफ के अंधरा के हैं। तो विशा वो ये दिखिया हुआ, फिर कीर्तन प्रभुपाद को कष्ट हो रहा है, अब वहां देखू। तो गुरुजी जो है लेक्चर दिए, जय राधा माधव अच्युतानंद गाया, विजय ध्वनि मनाया और प्रभुपाद के, तो भगवान के चतुर्विधा भजंती ये श्लोक जो है, चार प्रकार भगवान के शरण में आते हैं लोग है, चतुर्विधा भजंती ये श्लोक से भजन मैंने प्रवचन करने शुरू किए प्रभुपाद। तो 5-10 मिनट के बाद एक व्यक्ति खड़ा हो गया, हाथ उठा के मेरा प्रश्न है। तो चार प्रकार के भक्त समझा रहे थे, ऐसे ऐसे आते हैं इच्छा करके, चलो नहीं इच्छा करके आते नहीं से अच्छा है, बराबर है, अर्थात ज्ञानी जिज्ञास अर्थात ये ऐसे विचारों का बता रहे थे। तो आप नहीं बता रहे चार प्रकार के भक्तों के बारे में, तो स्वामी जी आप कौन से नंबर के हैं, ऐसा उसने बोल दिया। प्रभुपाद बोले मैं 10 नंबर का हूं। फिर प्रवचन चलता रहा, फिर 5-10 मिनट के अंदर फिर खड़ा हो गया वही व्यक्ति, फिर हाथ ऊपर उठाया, स्वामी जी दूसरा प्रश्न है, बोलिए। अभी आप बोले थे चार प्रकार के भक्त, आप 10 नंबर बोले, तो नहीं 10 नंबर भी नहीं, मैं 100 नंबर में हूं पीछे, तो सब हजार हजार जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभु ताली गूंजता रहा चार पांच मिनट तक। तो यहां देखते हैं हाउ टॉलरेट हाउ हम्बल, कितने नम्रता जगत गुरु पांडवाचार्य इस्कॉन सोसाइटी का। अब अपने आप को क्या बता रहे हैं, है? मैं 100 नंबर पीछे हूं। लेकिन आजकल हम टेंपल कमांडर ही बना देते हैं तो प्रेसिडेंट को सोचता है तुम्हारे से मैं बड़ा हूं, ये दुख की बात होता है। अब उसमें भक्ति में आगे बढ़ने में बाधक होता है। तो हमेशा जो है नम्रता रहने का प्रयास किया जाए, है? तो इसीलिए नम्रता कैसे बने, तो एकादशी को प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने का निर्णय लिया गया था। प्रभुपाद हम गुरु, हम भगवान को क्या जाने जी, गुरु को नहीं जानते हैं, गुरु अपने जीवन में क्या उतारा, ये पढ़ा पढ़ना सुनना बहुत जरूरी है। तो ऐसी ऐसी है छोटा छोटा प्रभुपाद से जो मिले। तो और कितना समय है जी, उस हिसाब से मैं चलूंगा, वो तो मैं शाम तक बोल सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन कितना समय बताइए, 5 मिनट, ओके। तो वृंदावन में 1976 में वृंदावन पहला, हमें गर्मी थोड़ा है गले में खुजली के बराबर हो गया मुझे आग से। तो मैं बोला मुझे कुकिंग किचन से छुटकारा, सबको प्रसाद बनाना। तुम लोग ये हंसवता महाराज के पार्टी में उसे बात करके गए, हमें पैसा मुझे और आनंद पद्मनाभ आंध्र प्रदेश के हैं उनको पैसा दिया, हम गए वृंदावन। तो वृंदावन में वहां, तो वृंदावन में रहकर बस में फिर गए अमृतसर में, बस में ज्वाइन हुआ, वहां से कुरुक्षेत्र प्रचार किए, और बस का परमिट खत्म हो गया तो वृंदावन आ गए जन्माष्टमी में 1976। वहां रहे तो कृष्ण बलराम प्रभु अभी स्थान से बाहर रहते हैं, तो कुक थे, हेड कुक। तो जन्माष्टमी के दिन जो है थोड़ा मुझे सहायता करो बोले, तो पहले बुलाया गया एक नेपाल के भक्त थे, क्या नाम, सूरदास प्रभु, नेपाली भक्त है, याद नहीं आ रहा। खैर उसको बोले किस में सहायता करो, बोला ब्राह्मण दीक्षा मेरा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, ब्राह्मण दीक्षा देंगे तो जाऊंगा। प्रभुपाद तो बोले ऐसे ऐसे बोलता है, फिर रहने दो। तो प्रभुपाद जो आप हलवा के बारे में बोलते हैं ना, वो भक्त भी दे रहे हैं, हाँ बोला उसको लगाओ। तो डीटी किचन में सेवा में लगाए। तो सुबह से प्रभुपाद अलाउंस किए थे मंगल आरती में, जिसका कुछ सेवा नहीं है 64 माला करो, जिसका बहुत सेवा है 16 माला करो, नहीं तो 25 माला करना ही है। तो सुबह जैसा 10-11 बजे मुझे बुलाया गया, थोड़ा सहायता करो प्रभु, ब्रह्मा अभी दीक्षा नहीं, नया भक्त हूं भाई, मुझे क्यों बुला रहे हो, अपराध होगा, मैं नहीं गया। और प्रभुपाद से बात कर लिए थे, बोला नहीं आना चाहता है, नहीं आना चाहता है, तो बोला मेरे पास बुलाओ। तो प्रभुपाद के रूम में बुलाए, तो प्रभुपाद बोला कैसे नहीं जाओगे, वे दंडवत प्रणाम किए दोनों, जरा सहायता कर दो, इसको सहायता कर दो डीटी किचन में। मैं कुछ बोला नहीं, बोलने का हिम्मत नहीं हुआ, बोला हाँ प्रभुपाद। तो जो जो बोलते थे कि आटा बना दो, सब्जी काट दो, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, सेवा करते थे, बहुत सारे आइटम बनाए। शाम को 4 बजे तक हवा के प्रभु जी ने थोड़ा अभी जपन ही खाली 3 माला किया हूँ, जा रहा हूँ, ताकि नहा धो के जप करने बैठा, फिर आ गए, क्योंकि मूंगफली फ्राई करना है, पीनट 80 किलो मूंगफली को फ्राई करना है, तो जरा फ्राई कर। मैं प्रभु जी मेरा जपन ही हुआ नहीं, तो प्रभुपाद के पास गए कृष्ण बलराम प्रभु, मैं अकेला क्या करूं, 80 किलो मूंगफली रात के लग दिया गया, फ्राई करने वाला कोई नहीं है। वो लड़का किधर है, मुंबई वाला, तो वो चला गया, उसी को बुलाओ, बुलाने आए, प्रभु जी मैं अभी नहीं जा सकता। फिर कम क्या की शिकायत की, प्रभुपाद प्रभुपाद तो नहीं आना चाहते, मेरे पास बुलाओ। फिर जाके प्रणाम के दंडवत, एक इतना बजे संध्या आरती के बाद 7:30 बजे, तो जरा मूंगफली फ्राई कर दो ना। तो मैं बोल ठीक है शिला प्रभुपाद, गए तो एक पीपा, उस समय जर्मनी का घी यूज होता था, 17 किलो का पीपा रहता था, यहां भी वृंदावन में भी हंसलता महाराज लाते। तो 80 किलो मूंगफली बहुत समय लगेगा, मैं 2 पीपा मांगा और नहीं दिए, तो मैं वापस आ गया। फिर वो कंप्लेंट की जगह वो घी जब मांगता है नहीं दिया तो बुलाओ लड़के को। गया प्रभुपाद, क्यों नहीं फ्राई किए? वो एक पीपा घी में चुपराने के बराबर होगा, मसाज के बराबर फ्राई का, बहुत लेट हो जाएगा प्रभु। तो कितना चाहिए? दो पीपा चाहिए। एक पीपा हम बचा देंगे। हंसदूता महाराज तो अच्छे आनंद टेम्पल पेशेंट हो भागे तो वाय वाय ने होगी बटर आई यू उनके वॉट एवर हेड कुक से यू। मुझे बोलते कितना चाहिए? मेरा दो पीपा चाहिए प्रभु। ये टू कैन ओके ओके दो पीपा दिया। तो दो तीन नया भक्त हम ले गए, ये डिगोडी का प्रसाद है, है? तो जो है दो कढ़ाई बैठाल दिए, एक घंटा में बना के दे रेडी भाई। 8:30 बज गया, वापस आ गया, वापस आ गया। फिर जप करना शुरू किया, फिर आ गए प्रभु जी। किससे बोल रहा हूँ? प्रभु जी एकादशी आटा का पूरी किसी को बनाने नहीं आता, चलो मुझे थोड़ा हेल्प करो। अरे बाबा जप नहीं हुआ है यार, ऐसे मैं नहीं गया। फिर तीसरा बार प्रभुपाद के पास हो गए। शिल प्रभुपाद क्षमा करना, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बार बार, उन्होंने ऐसा बोला, मुझे बताते हैं बाद में। वो लड़का का दोबारा जरा बोल दीजिए, मुझे पूरी का छाता दूसरे ये लोग को नहीं आता जो आए हैं, बुलाओ। गया प्रणाम किए तो जरा पूरी बना, दोनों सबको नहीं आता है, आप छाता करो इनको, दोनों मिलकर बना लो। तो प्रभुपाद आपने सुबह अलाउंस किए हैं इतना इतना माला करना, ये करना, मैं अभी तक केवल 3 माला किया हूं, तो मुझे माला करना का था। अब ये देखो 10 ये 9 से ऊपर ये 10 बजने वाला है। तो शिल प्रभुपाद बोले तुम्हारा 13 माला मैं करता हूं, जाके पूरी बनाओ। शिल प्रभुपाद की जय। जन्माष्टमी के दिन बाकी गिरिराज महाराज लोकनाथ महाराज सब लोकनाथ महाराज उधर से, बाकी सब इधर हैं, गोपाल कृष्ण महाराज भी इधर। थोड़ा बनाओ, जब तैयार हो जाएगा 12:15 बजे मेरे पास नहा धो के दूसरा कपड़ा पहन के इधर आओ। बोला ठीक है प्रभु। कपड़ा है कि नहीं? बोला हाँ है, हाँ। तो गए दो तीन फिर चिला नए भक्त और लपेट लिए, चलो अकेला आए आलू मिक्स करके बना करके साबुदाना में और सिंघाड़े के आटा में राजगिरा के आटा में पूरी बनाए जी। दो कढ़ाई में डाल दिए, बेल रहा, सब बना बना के कर रहे हैं, कोई बेल रहा है। तो जो है हम लोग 11:15 बजे तक रेडी कर दिया, और कोई बहुत ढेर। फिर नहा धो के तिलक उलक लगा के प्रभुपाद के पास क्वार्टर में घुस गए। सब सन्यासी ऐसे ऐसे देखते इधर इधर मैं प्रभुपाद बोलते रास्ता बनाओ बैठे। तो 3 माला हुआ था, 2 माला और हो गया। 12 बजने में 5 मिनट है, पुजारी का मैसेज आया अभिषेक का समय हो रहा है। जब बहुत बड़े डीडी का अभिषेक का पूरा प्लास्टिक से कवर करके कर कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर को नहीं सब लगाया हुआ। तो आप उठने लगे सन्यास, तो सेकंड इनिशिएशन एंड ऑल स्वामी कम उठे। मैं थोड़ा खड़ा हो गया इधर, प्रभुपाद ऐसा मुड़ के देखे इधर आओ। तो सब सन्यासी घूर घूर के देखते, कल का नया भक्त है, 2-4 दिन हुआ इसको प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ऐसे बोले तो फिर ये भी चुपचाप रास्ता छोड़े। तो तुम्हारे कृष्ण है उसके बगल में खड़ा हो गया, गए जब गौरते के बगल में छोटा दरवाजा है ना उसे अंदर घुसे। तो सब ऐसे ऐसे देख रहे हैं सन्यासी लोग, हमारे विदेशी ऐसे ऐसे घूर रहे हैं। अब फिर प्रभुपाद जब अंदर चले गए देखे, अल्टर में जब गए देखे तो मैं पीछे इधर आओ गया। तो मटका में इतना बड़ा बड़ा मटका, 11 लीटर दूध, 11 लीटर घी, 11 लीटर हनी, ऐसे जो है 25 जगह था औषधि महाऔषधि नवरत्न है, अनेक पुण्य तीर्थ नदियों का जल, 108 नदी या कितना इकट्ठा किए थे। तो तमाल कृष्ण महाराज को पुजारी लोग दो पकड़ के पटका पकड़े, तमाल कृष्ण महाराज बोले प्रभुपाद को पकड़ो। तो प्रभुपाद भी ऐसा मटका को पकड़े, तमाल कृष्ण को बोले कि तुम छोड़ना नहीं, यू ऑल्सो हेल्प। तो दोनों जो है पूरा पंचगव्य अभिषेक किए, पंचामृत अभिषेक किए। फिर मेरे को बोलते हैं इसके साथ अभिषेक करो, तो तुम्हारा ऐसे ऐसा देखता ही वो बहुत ही स्ट्रिक्ट अभिषेक। तो नया भगत महाराज, नया भक्त प्रभु, गुरु कृपा कृष्ण बलराम मंदिर में राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताई को नया भक्त प्रभु हमने वहां अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभुपाद के साथ सौभाग्य प्राप्त आ गए, बाहर निकले, प्रसाद खाए। प्रभुपाद बोलते हैं, जप करो तुम्हारा तेरा माला तुम्हारा दो माला हो गया है प्रभुपाद आपके सामने, पांच हो गया है, यहां तो 11 माला करो, 11 बड़ा स्पेशियस है, तो 11 माला जो अभी अब सो गए अभी आओ क्या प्रसाद सा ऐसे 3:30 बज गया जी क्या सो गए है, तो मैं बोला प्रभुपाद में माला मेरा 4:30 बजे तक आज का हो जाएगा, फिर 4:30 बजे से बाद में करूँ। हाँ ठीक है, तो गुरु कृपा है, जब हम भरोसा करते हैं, अरे गुरु कृपा से प्रभु आज 42 साल हो गया है सोसाइटी में मुझे, मेरे को अच्छे बुरे बहुत दिन आए, दुख सुख हानि लाभ मान अपमान बहुत आए, लेकिन मन में एक पल भी मुझे ये विचार नहीं आया कि मैं इस काम से बाहर चले जाऊं। इतने अभी तक मुझे भी अभी देखो मुझे लट्ठी आई, एक महीना पहले गिर जा रहा था चलते, वो हमारा मंदिर से आश्रम से मंदिर आने में यहां से वो गेट इतना चलना पड़ता है, तो मैं लट्ठी से तो फिर वहां ये लट्ठी उठी अलाउ इधर नहीं, मस्कत कल मस्कत से आए महाराज के साथ, महाराज भी गए थे इनके साथ भी निवृंदावन में रहे महाराज के साथ एक साथ है, महाराज भारतीय हैं लेकिन ब्रिटिश हैं है, मैं भी भारतीय हूं लेकिन अमेरिकन बन गया गुरु महाराज के कृपा से, तो देश विदेश में वहां मुझे लोग बोलते हैं तुमको अंग्रेजी भी बराबर नहीं आता, मलयालम वहां प्रचार केरला में करते हो, मस्कत जाते हो, बोला हाँ हिंदी सुन, बांग्लादेश में गया वो प्रभु हो होलीनेस जय पता कह महाराज के 25,000 से 30,000 इनिशिएट डिसाइपल हैं, 25,000 से 30,000 दीक्षित ढाका में प्रभु ओहो क्या क्या बहुत चलने में तकलीफ, मैं मई महीना गया था महाप्रभु के जन्म जगन्नाथ मिश्र के जन्म स्थान, सती माता के जन्म स्थान, श्रीवास पंडित के जन्म स्थान, ऐसे ऐसे करके वहां अर्ध दिन हम गए थे प्रचार में, तो बांग्लादेश में मुस्लिम भी जो है अभी नम्रता हो गए, कोई डिस्टर्ब नहीं करते। ढाका में प्रभु सुबह 10-11 बजे से लेकर के जो है रात को 9 बजे तक 10-12 हजार लोग प्रसाद खाते हैं वहां पड़े बहुत। मणिपुर में ही मैं बहुत वचन दिया था महाराज, इसे क्लास देते थे होली स्वरूप दामोदर महाराज, जरा पुजारी का ट्रेनिंग दो, वहां पुजारी में लोग बराबर नहीं है। हाँ हाँ महाराज बोला, जा नहीं पाया तो मैं वहां का भी व्यवस्था किया था, अभी मौका है जा, फिर ढाका से बांग्लादेश वापस आया फिर मणिपुर गया, तो वाह क्या सुंदर क्या बड़ा मंदिर बनाया महाराज, मानना पड़ेगा बड़ा मंदिर, बड़ा अच्छा सेवा। जो मैंने ट्रेनिंग दिया है वो भक्त वहां प्रेसिडेंट है, कोई टेम्पल कमांडर है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, एकनाथ प्रभु बनमाली प्रभु ये सब है उधर है। अरे वो लोग इतने खुश हुए प्रभु, मैं बोला कुछ प्रोग्राम करो शाम को, महाराज की जन्मभूमि में गया, उनका चाचा माधव महाराज का चाचा के बेटा को 4 माला में भी लगाया उनको, तो बड़ा अच्छा आनंदमय अभ्यास इस सोसाइटी भगवान के शरण में रहने से मिलता है। पहले हम जन्म में बंबई के बारे में नहीं सोचे थे है, घर गांव में रहने वाले बंबई के बारे में, कहाँ के रहने वाला कौशल प्रदेश जो कि छत्तीसगढ़ में जाने जाते हैं, कौशल प्रदेश माता कौशल्या का जन्म स्थान है, दंडकारण्य जब वनवास भगवान राम लक्ष्मण थे गए तो 10 साल जो है कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ में रहे 10 साल, बड़ा अच्छा है। तो मैं वहां का निवासी हूं, मैं पहला राम भक्त था, अभी प्रभुपाद भक्त हूं राधा रानी। तो मेरा यहाँ समय ज्यादा हो जाता है, क्षमा चाहता हूँ, बंद कर देता हूँ। और प्रभुपाद के बारे में अगर मैं अभी दो तीन दिन हूँ, अगर ये लोग पसंद आए विचार करें, समय देंगे, तो आज हम बोल सकते हैं, कल परसों, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ मेरा वाणी विराम दे रहा हूँ। आप लोग से विनती है, आप मैं कोई बना के नहीं बोला हूँ, जो मेरा जीवन में उतरा है, बहुत बहुत उदाहरण है दिल्ली का भी और है मायापुर का, और यहाँ कुंभ मेला का, इलाहाबाद कुंभ मेला का 77 में गुरु महाराज के साथ, तो हम बताएंगे। ठीक है, तो मैं अभी दो तीन दिन हूँ, 22 तारीख सुबह जाऊंगा, अभी दो तीन दिन हूँ। मैनेजर लोग कृपा करेंगे, काक दिन भागवतम क्लास तुम देंगे तो उसमें भी हम बता सकते हैं। हरे जय हो महाराज। आज आप चले जाओगे, रहोगे? ओ शाम को है, आप भी दो शब्द बोलेंगे, कैसे ज्वाइन हुए, प्रभुपाद का किताब पढ़ के तो ज्वाइन हुए ना, जरा दो शब्द उनसे भी सुन लो। एक साथ रहे, बहुत अच्छा, बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन, न्यू वृंदावन में हम लोग 4 साल एक साथ थे, राधानाथ महाराज, महाराज ब्रह्मचारी है, सब वहां हम थे। पूरा वेद भगीरथी वेद व्यास, वो किधर है व्यास जी? फिजी में होंगे। एनीवे, दो शब्द बता दीजिए, कैसे आप इच्छा नहीं? अरे महाराज कोई कुछ नहीं बोलेगा, अरे ये तो दयाल चावल हमेशा आज तो उपवास है, अभी काहे का प्रसाद, अभी काहे का प्रसाद है? क्या कर्ण का प्रसाद कान में सुनाए महाराज? कोई कुछ नहीं बोला, मेरे परमिशन ले लिया, बोल रही
हरे कृष्णा। So, for me, I cannot speak in Hindi. As Siddharth Maharaj said, that I am Angrezi Babu. Don't go by my skin color. Anyway, so I will briefly say my experience. That as a young student in England, I was minding my own business. But from my childhood, my grandfather used to tell me stories that how the British came to India and controlled the Indians. So I have never been to India in my life. I was born in Africa, and from Africa I went to England. But I had immense hatred for the British. I had so much hatred for the British that I would probably kill them. That much hatred I had for them. But somehow by circumstances, as a young 12-year-old boy, I went to England and started my studying in England. And at the age of around 14, one day I was going home from school. As I was going home, around 4:30-ish in the afternoon, in Wembley High Road, there I was very proud, and I look down upon the British, you know, I am Indian. Of course, I don't know how Indian I am, because I can't even speak the Indian language. But anyway, I was so proud and walking down, and there was this one English devotee. He came in front of me, stood in front of me. I said, "What do you want? Move out of my way." "No, no, no, sir, please spare a moment." I said, "I have no moment for you. You people are useless." "No, no, 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 you stop." Then he said, "You are Indian." Then I said, yes, I am Indian. I was so proud, you know. Yeah. And he said, "So you are Indian, it's very good. You take this book. It will tell you about Krishna." So I said, "You white people, what do you know about Krishna? I am born Krishna devotee. My mother is Krishna devotee. Her mother is Krishna devotee. Her mother is Krishna devotee. I don't know how far back we go, we are all Krishna devotees." Of course, you all know that you go to Gujarat, everyone will say, "Jai Shri Krishna, Jai Shri Krishna." Not hello, hi, how are you, Jai Shri Krishna. So, it is in our blood. I said, "You cannot tell me anything about Krishna, just move out of my way." So I pushed him aside and I kept walking, and he kept following me for almost 100 meters, and said, "No, no, no, you must take this book." Finally, I got so angry, I put my hand in my pocket, pulled out £1 note, and said, I'm so proud, I'm giving a British man some dakshina, you know, a beggar. You know, and if you give a beggar something, you know, that means you are a bigger person and the beggar is just begging, you know. It is very low class, begging. Of course, for us, when we are begging for Krishna, it is the highest. So don't feel shy when you beg for Krishna. Because if you beg for yourself, you should be feel ashamed. But for Krishna, you can beg. Anyway, so I gave him £1 and then I said, now don't pester me, just get out of my way. So pushed him again. No. Our Guru Maharaj has said, if someone gives money, then he must take a book. I don't want this book. No. Our Guru Maharaj said. Of course, I don't know who is Prabhupada. Although, in 1973, as a young kid, I went to the manor when they did the Janmashtami festival there, installation of Radha Gokulananda. So, as a good Hindu boy, I went along with the parents, you know, I said, yes, what's going on, you know. And I was good fortune to see Srila Prabhupada. But I did not understand who Prabhupada is. Then, anyway, so I took the book, put it in my bag and took it home. Few months later, I was sitting in my house and watching TV, and TV was nothing exciting. It was a very boring program. So my eyesight went towards the book. I said, let me check this book out, what this book is all about. So I picked up the book and started reading the book. First page, second page, third page. I read the whole book. That book was Sri Ishopanishad. So I read the whole Ishopanishad. And I tell you, when Prabhupada says these books are dynamic books, they can change people's lives, I can tell you I'm a living proof of that. Because up to that point, although I was brought up as a good Hindu, I was not like a devout bhakta. And of course, after reading the book, it was almost 6 o'clock in the morning. And I completely lost what time it was. So after 6 o'clock, when I finished reading the book, my mom came to the room. She said, oh, you're up early? I said, no, mom, I haven't gone to sleep yet. I'm going to sleep now. And my mom sort of, with a little, she never raised voice against me, but this time she kind of got a little angry. Don't you know it's time to get ready to go to school? Because, you know, Gujarati parents are very, very particular. You must go to school and become a doctor. Huh? I said, okay, mom. So I took my shower, everything, and then she said, what do you want for your breakfast? You want to start with tea or coffee? Because in those days, I used to drink about 10 to 12 cups of tea and coffee. Now, that is a lot of tea and coffee, you know. And you can imagine the amount of caffeine pumped into me. Fully dependent on caffeine, you know, living on caffeine. So I said, mom, no, I was reading that book. Swamiji in that book says, tea, coffee is intoxication. I'm not touching it now. And my mother was shocked. So you will not take tea and coffee? Now obviously, you know, when you are taking 10 to 12 cups of tea and coffee every day for last God knows how many years, my mother was shocked. Then I said, mother, maybe I can take some masala milk. And my mother was shocked again. Because I can't remember when was the last time I touched milk. Maybe when I was a baby, I probably was fed with a bottle of milk. But I can't remember drinking milk. So my mother was shocked. I said, no. Swamiji says, this is nourishment for the brain. Now if you read Ishopanishad, you'll find all this in there, in the purport of Prabhupada. So I was completely taken by Srila Prabhupada. And then of course, later on, my friend, Shukridama Prabhu, who is the temple president of Bhaktivinoda Manor, and of course he just resigned from there due to his ill health now. So he's going through some difficulties. But anyway, so him and me, we started visiting Berry Place Temple and started associating with devotees. And we began to appreciate Prabhupada and get to know Prabhupada. And then of course, we don't have much time, but we were planning that we should take shelter from Srila Prabhupada. So, it was 1977, and we approached the authorities. I said, yes, we'll tell Prabhupada about your proposal to take Diksha. But not now. Prabhupada is very sick. And of course, in 77 when Prabhupada came, he was very, very, very sick. And the devotees who were serving him were very protective. You could not even approach Prabhupada. But from a distance, you can see Prabhupada. Because in the morning, he would come down on his palanquin to take darshan of Radha Gokulananda. So, they said, you wait. When Prabhupada gets better, then we will see what to do. So, yeah, okay, no problem. We have already accepted Prabhupada as our guide and instruction from him through his books. And after Yasopanishad, we started reading the Bhagavad Gita and other books and associating with devotees. And then, you know, on that fateful day of 14th November 1977, Prabhupada had left his body. And we were not aware of that. But the very first Ekadashi, after Prabhupada's disappearance, Shruti Dharma and myself, we went to the Berry Place temple to take darshan of Radhalana and Ishwara. And as we were just entering the temple, one Mataji who knew us came running and said, you know, I have sad news for you. And she said, Srila Prabhupada has left his body. And at that point, I was completely shocked. And the only words which came out of my mouth was to my friend, saying, our guru is left. Who will we take shelter from now? We are bereft of the shelter of guru. Because of course, reading Prabhupada's books, Prabhupada said, one must approach a spiritual master. By the time now, we have already studied Bhagavad Gita. So of course, studying Bhagavad Gita, Tadviti Prani Pratena, Pari Prashna Sevaya, one must approach spiritual master, one must accept shelter from spiritual master. Although you may read the books, you have knowledge, you may everything, but without the shelter of Guru Kripa, you are zero. As of course Siddhartha Maharaj said, that he received Prabhupada's blessings, Prabhupada's mercy, and that is what makes us a good devotee. Not our sadhana, not our chanting, not our bhakti, but the mercy of the spiritual master. So of course, I was completely shocked in that early days. Then later on, you know, until 79, we were not too much having faith in anybody else except for Prabhupada. But in 1979, we made a conscious decision, myself and my friend Shruti Dharma Prabhu, that no matter what, Prabhupada is still alive. He's alive in his book. Let us surrender to him, because he opened our eyes. He brought us from this hellish condition of life. Because of course, by that time, we were not meat eaters, but at least occasionally we used to take a little bit of beer and whiskey shots, you know, brought up in a British culture. Other than that, we didn't have any bad vices, and tea and coffee we had given up a long time before. But I said, all these things are dragging your living entity down to the hellish regions, because your consciousness is at a very low level. If you indulge in all these eating of meat, drinking alcohol, taking intoxication. So I said, no. Prabhupada has given us opportunity, let's join his movement. And then of course, around that time, Sasarup Maharaj had produced his book, the first Lilamrita volume, was Planting the Seed. So we were reading Planting the Seed, and in that is mentioned, Prabhupada lives in his ISKCON. ISKCON is Prabhupada. It's no different. Prabhupada said, ISKCON is my body. And of course, the life and soul of ISKCON is none other than Prabhupada. Prabhupada is the soul of ISKCON, and ISKCON is his body. So if we are under the shelter of ISKCON, serving Prabhupada and continuing in our devotional life, and of course by the mercy of Prabhupada, he has left many wonderful devotees of his who are acting as initiating gurus. So we connect to Prabhupada, to Diksha, and of course, for me, I am not a Ritwik, but I must say and emphasize that no matter what happens for next 10,000 years, His Divine Grace, A.C. Bhaktivinoda Swami Prabhupada, is the preeminent Acharya and Siksha Guru for all, for next 10,000 years. After 10,000 years, I don't know what will happen. But Mahaprabhu has said, this is the golden era. And the king of this golden era, in terms of the topmost Siksha Guru, is none other than His Divine Grace, A.C. Bhaktivinoda Swami Prabhupada. And the BBT will be producing these books for next 10,000 years, and we are privy to studying these books, and come in the future, they will still be studying the same books. Therefore, I say to every one of you here, if you get opportunity to distribute even one book, do it. Because that one book will change the heart of one person. And if one person becomes a devotee by your effort, then Krishna is noting in his little book, then he is marked to come back home, back to Godhead. Thank you very much. Hare Krishna.
ये दोस्ती में तो निभाना पड़ता है अरे प्रभुपाल जी